की दो बातें, सलाम अला इबादिही नदीन अस्तफा, अम्मा बाद। पिछले चंद दिनों से सालिक को जो शेख के साथ नस्बत होती है उनकी चार अकसाम बयान की जा रही है, जो कि हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान फरमाई कि सालिक को शेख के साथ चार किस्म की निस्बतें हासिल होती है। और सबसे कमजोर निस्बत को निस्बत इन 81 कहा जाता है। ऐसा सालिक मामूलात में नहीं करता, गुनाहों में भी फंसा हुआ होता है, शेख के पास आना जाना भी कम कर देता है। दूसरी इससे ज्यादा कवी निस्बत, और उस निस्बत को कहते हैं निस्बत इल्काई, और ये निस्बत इल्काई पहली निस्बत से ज्यादा कवी निस्बत है। ऐसा सालिक जो है वो मामूलात भी कर रहा होता है, जिंदगी में सुन्नत और शरीयत की पाबंदी भी होती है, घर में माहौल नेकी वाला होता है तो आमतौर पे मामूलात भी कर रहा होता है, गुनाहों से भी बच रहा होता है जाहिरी गुनाहों से, मगर शेख के साथ उसका ताल्लुक इसलिए कमजोर होता है कि वो शेख को अपने बातनी अमराज दूर होने का जरिया नहीं समझ रहा होता है, उसकी तवज्जो बातनी अमराज को दूर करने की तरफ नहीं होती, बल्कि क्योंकि वो नेक होता है जैसे और नेकों से उसकी दोस्ती मोहब्बत, उसी तरह उसके शेख से दोस्ती मोहब्बत, तो इसलिए वो भी निस्बत तो मजबूत है, पहली निस्बत से ज्यादा मजबूत, मगर कामिल निस्बत नहीं है। इसी तरह तीसरी निस्बत जो सालिक को शेख के साथ, उसको निस्बत इस्लाही कहा गया, और ये निस्बत जो है ये मकसूद है हर सालिक की। जो सालिक जो है वो शेख की खिदमत में आता जाता भी है, मामूलात भी करता है, घर में भी माहौल जो है वो गुनाहों से पाक होता है, जाहिरी गुनाह भी नहीं होते, और असल चीज ये कि वो शेख को अपने बातनी गुनाहों के दूर होने का जरिया समझता है। तो शेख के साथ एक खास ताल्लुक होता है, एक खास मोहब्बत होती है। और ये सालिक जो है ये मोहब्बत इलाही में भी आगे बढ़ता है, बातनी सफाई में भी आगे बढ़ता है, क्योंकि ये वाली निस्बत वाला सालिक होता है तो ये अपने दिल में नीयत रखता है जी मेरे शेख जो है वो मुझे इन बातनी अमराज से छुटकारा नसीब फरमाएंगे, उनके जरिए से मैं ये बातनी नेमत हासिल करूंगा, उनके जरिए से मैं अल्लाह की मोहब्बत हासिल करूंगा, उनके जरिए से मैं नमाज में हुजूरी हासिल करूंगा, उनके जरिए से मैं अल्लाह की तरफ मुस्तकिल तवज्जो नसीब हासिल करूंगा। तो ये वाला सालिक उसकी नीयतें और होती है, इसलिए ये जो निस्बत इल्काई वाला सालिक होता है और निस्बत इस्लाही वाला सालिक जाहिरन देखने में दोनों उसी तरह से लगेंगे, दोनों के कपड़े भी एक और दोनों की पगड़ियां भी एक होंगी, मगर उनके बातिन में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक बड़ा फर्क निस्बत इस्लाही वाले सालिक में और निस्बत इल्काई वाले सालिक में यह होता है कि निस्बत इल्काई वाला सालिक जो है वो शेख को अपने स्केड्यूल में फिट करने की कोशिश करता है। अगर शेख का उनके स्केड्यूल में फिट होते हैं तो बहुत ही अच्छा, वरना वो रहने देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर शेख की मजलिस जो है वो उनकी फ्री टाइम में आ रही है तो मजलिस अटेंड कर लेंगे, फ्री टाइम में आ रही है तो वो इस मजलिस को अटेंड करने के लिए और कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये जो निस्बत इस्लाही वाला सालिक होगा वो शेख की खिदमत में हाजिर होने के लिए हर चीज आगे पीछे कर देगा। इसी तरह शेख जो है निस्बत इल्काई वाले सालिक को बहुत ज्यादा डांट टपट नहीं कर सकते, क्योंकि वो शेख को और नेक लोगों की तरह एक नेक आदमी ही समझता है। ज्यादा डांट टपट की जाएगी तो वो किसी और नेक आदमी के साथ दोस्ती कर लेगा, नेकी से नहीं हटेगा। और इस सिलसिले में इस्लाह के लिए डांट टपट जरूरी है। इसलिए हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ स्केड्यूल खानकाह में बनता था उसमें एक घंटा डांट टपट का होता था। और डांट डपट क्यों जरूरी है कि डांट डपट करने से सालिक का सब्र, दिल की फराखी बढ़ती है, और ये सब्र का बढ़ना ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। तो जो सालिक इस्लाह के रास्ते में होगा उसका सब्र भी बहुत ज्यादा होगा। बल्कि कुछ मशायख ने फरमाया कि मकामात जो सालिक सालिक तय करता है उसमें आखिरी मकाम सबसे ऊंचा अल्लाह के कुर्ब वाला जो मकाम है वो सबर ही है। तो इसलिए मशायख अपने सालिकीन को सबर आजमा सिचुएशंस में डालते हैं, और उस सबर आजमा सिचुएशन में एक सिचुएशन यह है कि डांट डपट की जाती है, एक सिचुएशन यह है कि उन पर कामों का, खिदमत का बोझ डाला जाता है। मगर निस्बत इल्काई वाले के ऊपर बहुत ज्यादा ना सबर आजमा सूरत हाल डाली जा सकती है, ना खिदमत का बोझ डाला जा सकता है, क्योंकि वो शेख को उस नजर से देख ही नहीं रहा कि मैंने कोई बातिन की नेमत हासिल करनी है। वो तो यही सोच रहा है कि जी मेरे मस्जिद के इमाम अच्छे आदमी है, मेरे दोस्त हैं, ये शेख भी बड़े अच्छे नेक आदमी है तो ये भी मेरे दोस्त बन जाए। तो इसलिए इस निस्बत इल्काई और निस्बत इस्लाही वाले सालिक में बड़ा फर्क है। निस्बत इस्लाही वाले सालिक में भी कभी कभी एक गलती आती जरूर है, एक चीज, एक गलत फहमी उसे होती है। तो वो होता तो जबरदस्त सालिक है, वो असल सालिक, शेख जिस सालिक को ढूंढ रहे हैं वो वाला सालिक है जो निस्बत इस्लाही वाली नीयत लेके आया है। वो बातिन की इस्लाह चाहता है, वो अल्लाह का कुर्ब चाहता है, वो नमाज की हुजूरी चाहता है, वो हर वक्त की अल्लाह की याद चाहता है, ये असल सालिक है। मगर कई मरतबा वो ये गलती करता है कि उसके जहन में ये होता है कि ये जो शेख है ये इस नेमत तक पहुंचाएंगे और इस तक पहुंचने में टाइम लगना है, क्यों ना मैं दो तीन ऐसे मशायख से ताल्लुक रख लूं तो शायद जल्दी पहुंच जाऊंगा उस मकाम तक। तो नीयत तो सही होती है मगर ये एक गलती है, और अकली तौर पे तो ये ठीक लग रहा है कि एक शेख अगर मुझे 10 साल में अल्लाह के पास पहुंचा देते हैं तो क्यों ना मैं 10 मशायख रख लूं और 1 साल में अल्लाह तक पहुंच जाऊं। मगर मशायख ने फरमाया कि ये तरतीब ऐसी है नहीं, जिसका एक से ज्यादा शेख होगा उसके लिए अल्लाह तक पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा। चुनांचे मशायख ने मिसाल दी, एक आदमी एक घोड़े पर सफर करेगा तो एक अच्छी स्पीड पे जाएगा, 2 घोड़ों पे एक साथ सफर करने की कोशिश करेगा तो नीचे गिरेगा, تو اس لیے اسی طرح سے جو سالک ایک شیخ کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ سب سے تیز ترین راستے پہ ہے, اور جو دو مشائخ کے ساتھ اصلاح کا تعلق رکھے گا وہ نیچے ہی گرے گا. چنانچہ مشائخ نے ایک اور مثال دی کہ جو سالک ایک سے زیادہ مشائخ یا دو مشائخ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ دو دروازوں میں سے ایک وقت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو نسبت اصلاحی والا سالک اپنے سالک اپنے ذوق شوق کی وجہ سے کئی مرتبہ یہ غلطی کر بیٹھتا ہے, ایک اللہ والوں سے تعلق کیا, کہیں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ کوئی اور اللہ والے بھی ہیں, تو سوچا ان کے بھی معاملات کروں اور ان کے بھی معاملات کروں, اور ایسا سالک جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ایک شیخ ہو, ان کے بتائے ہوئے اعمال کیا جائے اور ان کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ آپ کی اصلاح کرے. کچھ مشائخ نے تو فرمایا کہ سالک جو ہے نسبت اصلاحی کی نیت جو رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو شیخ کے سامنے ایسے رکھے کہ جیسے ایک میت جو ہے وہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتی ہے, کل میتی بین ید الغسال, کہ وہ شیخ کو پورا موقع دے کہ شیخ اس کو اس کی ہر چیز میں روک ٹوک کر سکے. کئی مرتبہ سالک یہ بھی غلطی کرتا ہے کہ اپنی اچھی اچھی باتیں تو شیخ کو ساری بتاتا ہے, اور جو اصلاح طلب بات ہوتی ہے وہ نہیں بتاتا. چنانچہ ایک شیخ کے ایک سالک تھے, وہ اپنے نیک اعمال جو کرتے تھے وہ تو سارے شیخ کو بتاتے تھے, اور جو غلطی کوتاہی ہوتی تھی وہ شیخ سے بڑا چھپاتے تھے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے شیخ کو. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ جی بیماری میں نے نہیں بتانی, کہیں پتہ نہ چل جائے ڈاکٹر کو. تو پھر بیماری اگر نہیں بتانی ڈاکٹر کو تو آ کیوں رہے ڈاکٹر کے پاس. چنانچہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا کہ میں حضرت کو بتاؤں یہ جو غلطیاں آپ کرتے ہیں نا اور گڑبڑیں آپ کرتے ہیں. تو آگے سے بیگم کو کہتا ہے کہ اگر تو نے حضرت کو یہ بتایا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اللہ اکبر. تو پھر یہ اصلاح کی نیت نہیں ہے, یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تو سالک جو ہے نسبت اصلاحی والا وہ شیخ کے ساتھ ایک والہانہ تعلق رکھتا ہے, پراپر نیت کر کے آیا ہوتا ہے کہ میرے باطنی امراض جتنے ہیں میں نے ان کو دور کرنا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ کمرہ صاف کرنا ہے, انسان کہتا ہے کہ یا تو میں اکیلا صاف کروں, اکیلا کمرے کی چھتوں پہ اور کمروں کی سائڈوں پہ پہنچنا مشکل ہے, تو وہ مدد لیتا ہے ایک ایسے بندے تک جس کی رسائی ہے ان چھتوں تک اور ان سائڈوں تک, اس کمرے کو صاف کر لیتا ہے. یہ دل بھی اسی طرح سے کمرہ ہے, انسان خود پوری طرح سے صاف نہیں کر پاتا, اس لیے شیخ کی مدد لیتا ہے اور اس دل کے کمرے کو صاف کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دل کے کمرے کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بس ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ ہے، یہاں فجر کی نماز جلدی ہوتی جا رہی ہے، تو کل سے کوشش یہ ہوگی 7 بجے مراقبہ شروع ہو جائے انشاءاللہ. تو پہلے ٹائم 7:15 تھا، اب ٹائم انشاءاللہ 7 بجے سے ہو جائے گا انشاءاللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.